नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिनसे प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े धन शोधन मामले में 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी, अब फिर से मंगलवार यानी कि आज ईडी के सामने पेश होंगे। राहुल गांधी सोमवार को पहली बार पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश हुए। उनके साथ बहन प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई नेता थे और उनके साथ सीआरपीएफ के जवान भी थे। उन्हें दोपहर में 80 मिनट का ब्रेक दिया गया था। वो रात करीब 11:10 पर पूछताछ के बाद ईडी कार्यालय से निकले। ईडी के समन के खिलाफ सत्याग्रह मार्च का आह्वान करते हुए दिल्ली और राज्य की राजधानियों में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं को पार्टी द्वारा ताकत के बड़े प्रदर्शन के बीच यहाँ हिरासत में लिया गया। राहुल गांधी के प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय से निकलने के तुरंत बाद पार्टी के शीर्ष नेताओं को रात करीब 11:30 पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया। प्रमुख विपक्षी दल ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने उसके नेता वेणुगोपाल और अन्य पर हत्यारा हमला किया, जिसमें पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम और प्रमोद तिवारी के सिर के सिरे में फ्रैक्चर हो गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पुलिस द्वारा बल प्रयोग के कारण घायल होने की कोई घटना उसकी जानकारी में नहीं आई है। वो ऐसी किसी भी शिकायत की गंभीरता से जांच करेगी और उचित कार्रवाई करेगी। भारत का प्रतिनिधिमंडल हाल ही में अफगानिस्तान के अंतरिम तालिबानी सरकार से मिला है। भारत ने इस मुलाकात को मानवीय मदद बताया है। अफगानिस्तान के साथ संबंध बहाली को लेकर भारत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। तालिबान की सरकार तो चाहती है कि पहले की तरह रक्षा और राजनयिक संबंध बहाल हो जाएं। भारत में अफगानी रंगरूटों का सैन्य प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाए, वहां की परियोजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं में भारत की आर्थिक मदद बहाल कर दी जाए। भारत सरकार जल्दबाजी के मूड में नहीं है। वजह साफ है, तालिबान के पाकिस्तान के साथ संबंध, पश्चिम एशिया की कूटनीति और कश्मीर के हालात। इन तीनों मुद्दों को लेकर जब तक भारत सरकार तालिबानी नेतृत्व की ओर से आश्वस्त नहीं हो जाती, तब तक कोई ठोस फैसला सामने नहीं आएगा। तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार भारत अफगानिस्तान पहुंचा है। बीते हफ्ते भारत की ओर से वरिष्ठ राजनयिक जेपी सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल अफगानिस्तान पहुंचा। काबुल में उन्होंने तालिबान के नेताओं से मुलाकात की। अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल मिला और अफगानिस्तान में चल रही भारतीय परियोजनाओं का हाल देखा। दरअसल तालिबान के सत्ता संभालने से पहले भारत पर्दे के पीछे से उसके संपर्क में रहा है। अब सीधे भारत अफगानिस्तान में बैठ कर रहा है। दरअसल चीन और पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में अपनी पकड़ बनाने में लगे हैं। प्रयागराज में हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद जावेद पंप के प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उनका घर बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। वहीं कार्रवाई के बाद कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि वो घर आरोपी जावेद पंप के नाम नहीं बल्कि उसकी पत्नी प्रवीण फातिमा के नाम था। प्रयागराज के जल कल विभाग की ओर से फरवरी 8 को जारी की गई घर के पानी के बिल की रसीद ये दर्शाती है कि परवीन फातिमा ने 4,578 रुपये के पानी के बिल का भुगतान किया था। दूसरी ओर प्रयागराज नगर निगम द्वारा जारी 28 जनवरी के एक प्रमाण पत्र से पता चलता है कि हाउस नंबर 39C/2A/1 परवीन फातिमा के नाम पर है और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए हाउस टैक्स का भुगतान भी उसी की ओर से किया गया था। बता दें, प्रयागराज प्रशासन ने रविवार को केवल एक दिन का नोटिस देने के बाद जावेद पंप के घर को ये कहते हुए ध्वस्त कर दिया कि निर्माण उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के प्रावधानों का उल्लंघन कर किया गया था। प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में परवीन फातिमा का नाम नहीं बल्कि उनके पति मोहम्मद जावेद का नाम था, जिन्हें हिंसा के आरोप में प्रयागराज पुलिस के द्वारा शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। देश भर के कई शहरों में बीते शुक्रवार को हिंसा हुई थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी हिंसा हुई थी और पुलिस ने हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ पंप को बताया है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन की कार्रवाई का कई लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार ने हिंसा से जुड़े हुए 85 आरोपियों की लिस्ट बनवाई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि जिला पुलिस पैगंबर को निशाना बनाने वाली टिप्पणियों को लेकर विरोध प्रदर्शनों में शामिल 85 प्रमुख आरोपियों के नाम अनियमितताओं की जांच के लिए नागरिक प्राधिकरण को भेज रही है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया है कि उन्हें 37 आरोपियों की सूची पहले ही मिल चुकी है और जाँच प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस बीच पुलिस के कदम ने स्थानीय आबादी में आशंका फैला दी है कि ये बुलडोजर एक्शन की शुरुआत भर है। वहीं प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार ने इंडियन एक्सप्रेस से बताया कि पुलिस सभी गिरफ्तार आरोपियों के नाम प्रयागराज विकास प्राधिकरण को जांच के लिए भेज रही है। श्रीलंका में खाद्य संकट बना हुआ है। कोरोना महामारी से पहले 2.2 करोड़ आबादी में से करीब 10% खाद्य सुरक्षा मुद्दों से जूझ रहे थे तथा आर्थिक पाबंदियों तथा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध से स्थिति और बिगड़ी है। देश की केंद्रीय सांख्यिकी एजेंसी द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।